Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 3, Text number 26. Kripaya, in atyant ki pavitra shabdon ko mere saath saath ucharan karne ka prayas kijiye. Bhagwan kehte hain, na buddhi vedam janayet akhyanam karma sangina Joshayet sarva karmani Vidvan yukta samacharan Na buddhi bhedam janayet Akhyanam karma sanginam Joshayet sarva karmani Vidvan yukta samacharan na buddhi bhedam janayet akhyanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yukta samacharan na buddhi bhedam janayet akhyanam karma sanginam Joshaye sarva karmani Vidvan yukta samacharan Na buddhi bhedam janayet Akhyanam karma sanginam Joshaye sarva karmani Vidvan yukta samacharan Na buddhi bhedam janayet Akhyanam karma sanginam Joshayet sarva karmani Vidvan yukta samacharan Na buddhi bhedam janayet Akhyanam karma sanginam Joshayet sarva karmani Vidvan yukta samacharan Na buddhi bhedam janayet Akhyanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yukta samacharan shabdon ka arth dekhiye na buddhi bhedam janayet na matlab nahi buddhi bhedam yani buddhi ka vishrit janayet yani utpann kare yani ki aapko किसी की बुद्धि को विचलित बुद्धि के अंदर विचलित उत्पन्न नहीं करना चाहिए किसकी बुद्धि के अंदर आगे कहते हैं अज्ञानाम कर्म संगीना जो अज्ञानी हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है मूर्ख हैं अज्ञाना मतलब मूर्ख कर्म संगीना मूर्ख कौन होते हैं जो सब काम कर्मों के फलों में आसक्त होते हैं तो जो ज्ञानी हैं उन्हें चाहिए कि जो अज्ञानी हैं यानी जो सब काम कर्मों के फलों में आसक्त हैं उनकी बुद्धि को विचलित ना करें और क्या करें जोशयेत यानी नियोजित करें सर्व कर्माणि सारे कर्मों के विद्वान यानी विद्वान व्यक्ति युक्त यानी लगा हुआ तत्पर समाचरण अभ्यास करता यानी उनको बल्कि क्या करना चाहिए कि उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए बल्कि भक्ति भाव से उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाना चाहिए कि सुन ठीके ये कार्य में लगाओ ये कार्य में लगाओ ऐसे नहीं कि आप ये कार्य करो ही नहीं ऐसे मतलब उनकी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बल्कि उनको कृष्ण भावना भावित करके भक्ति भाव से कार्य में लगाना चाहिए अनुवाद देखिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित ना हो अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास होता है इन अत्यंत ही अद्भुत शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं धराति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथ वितन्तं सजीवं सत्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। इस तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्म योग के विषय में बता रहे हैं। वास्तव में हर कोई व्यक्ति एक ही स्तर पर नहीं होता है कि आप किसी को भी भगवान की भक्ति के विषय में बताओ तो वो उसको ग्रहण कर सके, यानी कि उसकी स्थिति नहीं होती है। कुछ लोग वे कर्म की स्थिति पर होते हैं, कुछ कर्म कांड की स्थिति पर होते हैं, कुछ कर्म योग की स्थिति पर होते हैं, कुछ ज्ञान योग और कुछ ध्यान योग की स्थिति पर होते हैं। भक्ति पराकाष्ठा है। भक्ति जैसे हमने कल पढ़ा, भक्ति के अंदर कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, भक्ति संपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई की बुद्धि भक्ति को एक्सेप्ट कर सके, है ना। इसलिए भगवान आज हमें, वैसे तो भगवान ने पहले भी बताया कि कर्म करना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्थिति पर हो, आप कर्म करोगे तभी आप सिद्धि को प्राप्त करोगे, क्योंकि कर्म करना स्वाभाविक है। शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धेद अकर्मणा, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो अपनी शरीर की इस यात्रा को भी संपन्न नहीं कर सकेंगे। तो कर्म करना तो अनिवार्य है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर कोई कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। तो फिर अगर कुछ लोग कृष्ण भावना भावित होकर कर्म नहीं कर रहे, कर्मकांड की स्थिति पर है, तो हाँ जो बुद्धिमान है, जो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं, तो उनको उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए वो भगवान आज हमें बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीना, जो अज्ञानी हैं और जो सकाम कर्मों में बहुत ज्यादा आसक्त हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञानी को ये चाहिए कि उनको विचलित ना करे, उनकी बुद्धि को बुद्धि भेदम यानी उनकी बुद्धि को विचलित ना करे। यानी अभी भगवान हमें ये बता रहे हैं कि आसक्त कर्म और अनासक्त कर्म में फर्क होता है, लेकिन भगवान हमें ये समझाएंगे कि अगर लोग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो उनको आप डिस्टर्ब मत करो और धीरे 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 आप उन्हें कृष्ण भावना के कार्य में लगाओ और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनका विकास हो जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे स्तर पर आएंगे। डायरेक्ट से आप किसी को भक्ति में नहीं ला सकते हो, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसे बताया जाए। जैसे कुछ होता है अज्ञात स्फूर्ति, एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञात स्फूर्ति। अगर डायरेक्ट से किसी को ज्ञान थोपोगे ना तो उसको समझ में आएगी नहीं बात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको जैसे प्रसाद खिलाना, संकीर्तन में आना, उनको संकीर्तन का अवसर प्रदान करना या इस तरह के कार्य, लेकिन डायरेक्ट से जैसे कैसे के एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गणेश जी का भक्त है और गणेश जी को ही सब कुछ मानता है और हम डायरेक्ट से उसको जाके कहेंगे कि ये क्या आप बेवकूफ हो, गणेश पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और ये श्लोक सुनाएंगे वो श्लोक सुनाएंगे और बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7.20 में काम ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते। अल्पमेधसा, आपकी तो बुद्धि मारी गई, आपके पास तो अक्कल ही नहीं है, तो मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, भगवान कहते हैं कि वो बेवकूफ होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृति न मूढ़ा, वो तो दुष्ट हैं, मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं, गधे हैं जो देवताओं की भक्ति करते। डायरेक्ट से अगर इस तरह से उन पर घात किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा, तो वो बहुत विचलित हो जाएगा उसको, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ इतना ही जान सका है कि मुझे भक्ति किस लिए करनी है कि कुछ मुझे सुख और सुविधा प्रदान, सुख संपत्ति कर आवे विघ्न मिटे, उसके लिए मुझे भक्ति करनी है। उसे अभी तक ये पता ही नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे बारंबार दुखों भरी दुनिया में आने से, अपने आप को ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति, वो कुछ खबर नहीं है। और डायरेक्ट से यदि हम इस तरह से आक्रमण करेंगे तो वो क्या सोचेगा कि ये तो बहुत बड़ा जंगल है, ये कृष्ण बढ़ाए गणपति बढ़ाए कुछ पता ही नहीं है, इससे बेहतर है छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नास्तिक बन जाएगा और जिस स्तर पे था उससे भी नीचे गिर जाएगा। यानी कि वो जिस स्तर पे है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों की संतुष्टि के लिए झूठ बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, पर हमें सत्य इस तरह से बोलना है कि लोग सत्य की ओर आकर्षित हो सके। अब लोग सत्य को समझने की बजाय उसको बिल्कुल नकार ही दें तो ऐसा सत्य बोलने का क्या फायदा है ना। हमें सत्य इस तरह से बोलना है कि लोग जिस स्तर पर हैं उस स्तर से उन्हें ऊपर उठाना है, उस स्तर से उन्हें नीचे गिराना नहीं है। अगर हम डायरेक्ट से इस तरह उनकी बुद्धि को भेद कर देंगे तो वो कर्म कांड से कर्म योग की ओर नहीं आएंगे, बल्कि कर्म कांड से रिकर्म की ओर चले जाएंगे, यानी जिस स्तर पर हैं उनसे भी गिर जाएंगे और मिथ्याचारी बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि हमें खंडन नहीं करना है, खंडन करना है, उनकी उनका जो मत है उनकी जो बुद्धि के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन खंडन कैसे करना है, एक उचित समय पर खंडन करना है। जैसे जैसे गणपति या देवता पूजा है, देवताओं की पूजा और कृष्ण भक्ति, वो बहुत ही अलग, यानी जमीन और आसमान का अंतर है उसके अंदर। तो अगर हम देखते हैं देवताओं की पूजा का स्तर बहुत नीचे, आप ऐसे तस्वर करो कि एक बहुत नीचे देवता की पूजा का स्तर है और कृष्ण की पूजा का स्तर बहुत ऊपर है, तो हमें इन दोनों को मिलाने के लिए एक ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाकर हमें पहले नीचे उतरकर जो देवता के पुजारी हैं उनको धीरे 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 कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास करना। ये नहीं बताना है कि देवता की पूजा करना रॉन्ग है, बस ये बताना है कि कृष्ण की पूजा करना कितना परफेक्ट है। मतलब गीता के विषय में बताना है भगवान कृष्ण है और धीरे धीरे उनको प्रसाद खिलाना, संकीर्तन में उनको, हाँ ठीक है आप भी देखो। वास्तव में क्या होता है, जो ये सकाम कर्मी होते हैं ना, जो ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि आप परफेक्शन की ओर नहीं देखते। वो उनको जो भी बताओगे ना आप यासासन में बैठ के, वो ऐसे करना है लगे। हाँ हमारे गुरु महाराज भी, मतलब कहीं पर भी जाएंगे ना, कोई किसी भी सत्संग में जाएंगे, दीदी के सत्संग में जाएंगे, भाभी के सत्संग में जाएंगे और किसी भी बाबा बाबू के सत्संग में जाएंगे ना, तो वो ऐसे बोलेंगे। हाँ आप जो भी बोलोगे तो क्या बोलेंगे, हाँ हमारे हम जाते हैं, हम वहां पर भी सत्संग में यही बोलते हैं, यही बोला जाता है। तो हालांकि बिल्कुल अलग होता है, देवताओं की भक्ति का स्तर और कृष्ण भक्ति का स्तर एकदम अलग है, लेकिन उनकी बुद्धि इस बात को पकड़ नहीं पाती है। वो सिर्फ क्या सोचते हैं, हाँ ऐसा ही तो बोलते हैं, हमारे लोग भी ऐसे ही बताते हैं, आप लोग भी वैसे ही बताते, सही है, बस सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। अरे बाबा सब रास्ते एक ओर नहीं जाते हैं, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन ठीक है, वो जिधर भी हैं उनको ये मत बताओ कि आप रॉन्ग हो, उनको कृष्ण के विषय में बताओ। और कृष्ण के विषय में जब श्रवण करता है ना व्यक्ति, तो हृदय के अंदर की गंदगी खत्म हो जाती है। भागवत कहती है कि जब आप कृष्ण के विषय में श्रवण करते हो, विधनोति सुहृत सम, यानी कि भगवान कथा के माध्यम से, भगवान अपने नाम के माध्यम से हमारे कर्णों के जरिए हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं और हृदय की जो गंदगी यानी भौतिक आसक्ति है उसको साफ करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट से भगवान के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि उनकी बात को, ये भी नहीं कि आप गलत हो, ये भी नहीं कि आप सही हो, उनकी बात को कुछ भी नहीं, सिर्फ ओरिजिनल जो चीज है उनको देते जाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की कथा अपना सर दिखाएंगी, उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए कि मैं इसे ऐसा बताऊंगी तो उसको समझ में आ जाएगा, नहीं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, कचरा भरा हुआ है ये देह और इसके अंदर जो बुद्धि है सब कुछ कचरा है। अगर कुछ सार है संसार में तो केवल कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा। परिवर्तन केवल वही ला सकते हैं, हम नहीं परिवर्तन ला सकते, तो क्या भगवान की कथाएं और भगवान का नाम उन्हें देते 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 ये जो ब्रिज बना है ना, ऐसे पुल बनाइए ना, उस पर आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 वो चढ़ के वहां कृष्ण भक्ति पर पहुंचेगा एक दिन। और जब वो कृष्ण भक्ति पर पहुंचेगा फिर क्या करना है, ठक से उस पुल को तोड़ देना है, वो जो पुल है वो तोड़ देनी है। अब तुम भक्ति नहीं कर सकते देवताओं की, अब तुम ऊपर आ गए हो, अब आदर करो, लेकिन तुम केवल कृष्ण की भक्ति करो। ऐसा जब श्री प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका में, और श्री प्रभुपाद जी को अक्सर ऐसे लोगों के साथ मिलना पड़ता था जो कि अलग अलग संस्थाओं से होते थे, कोई है ना चिन्मय का होता था, कोई सत्य साई बाबा का होता था, और किस तरह होते थे। तो श्री प्रभुपाद जी ये नहीं कहते थे कि आप रॉन्ग कर रहे हो, आप ओके आप सुनो, खाली एज इट इज प्रचार करते थे। और कभी कभी तो है ना ऐसा होता था कि कभी भी नहीं बोलते थे आप रॉन्ग हो, क्योंकि अब बचपन से उन्होंने सत्य साई बाबा का है ना प्रचार सुना है और उसी की ओर, अचानक से आप उनको कह दो कि आप रॉन्ग हो तो क्या करेंगे, वो आपकी ओर आना ही पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे ये तो है ना समझ से नहीं है, बल्कि और दूसरों को कुछ समझ ही नहीं रहे, खाली अपने को ही सब कुछ समझ रहे। तो फिर क्या करते थे श्री प्रभुपाद जी, सिर्फ एज इट इज बताते थे, आप रॉन्ग हो नहीं बोलते थे, आप राइट हो भी नहीं बोलते थे। तो ऐसे करते करते जब उनके हृदय में कृष्ण भावना में जागृत होती थी, तो फिर एक बार आके बोला कि मेरे पास लाइब्रेरी भर के सत्य साई बाबा और चिन्मय जी के है ना शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र है श्री प्रभुपाद, मैं उनका क्या करूं। श्री प्रभुपाद ने बोला अगली समाधि दे दो सबको। मतलब ये बात अगर पहले दिन बोली होती तो श्रीला प्रभुपाद जी को सुनते नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस स्थिति पर पहुंच गए तो फिर अग्नि समाधि दे दी। उनको पता था ये सब व्यर्थ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मति को उलझाने वाली बातें हैं। तो केवल अगर कृष्ण भक्ति हम करते हैं और इस शास्त्रों को प्रचार करते तभी हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि लोगों को प्रचार करके हमारे पास लाना ये एक बहुत बड़ी कला है। ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी को रोंग कहकर हम उसके हृदय में जगह नहीं बना सकते। पहले तो उसके हृदय में अपने लिए जगह बनानी है और उसके बाद उसको जो राइट राइट है वो बताना है। ऐसे डायरेक्ट से उसका खंडन करके हम उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। यदि भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगनम, कि जो अज्ञानी है जो कर्मों की और कर्मों के फलों की ओर आसक्त हैं तो उनकी बुद्धि को भेद मत करो। जो है सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, तो जो भक्ति भाव से कर्म करते हुए आप मतलब जो भी कार्य कर रहे हो भक्ति भाव से करो और उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाओ, कार्य करने दो उनको, भले अपना भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी भक्तिमय कार्यों में उनको लगाओ। धीरे 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 कृष्ण भावना में विकास होगा और वो अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 15। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। क्या सिद्धांत? के संपूर्ण वेदों का रचयिता, संपूर्ण वेदों का जानने वाला और संपूर्ण वेदों का लक्ष्य केवल कृष्ण है, यही पराकाष्ठा है। ये सारे वैदिक रसुमात, सारे वैदिक जो अनुष्ठान है उनका अंतिम लक्ष्य है, पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त ही हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वेदों के अंदर जितने भी अनुष्ठान बताए गए हैं, जितने भी यज्ञ बताए गए हैं, जो भी भौतिक कार्य बताए गए हैं, वो सारे के सारे सब सारे इसी बात को जानने के लिए, यानी कृष्ण को जानने के लिए। वैदेश सर्वे अहमेव वेद्य, यानी कि भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देशन है उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के लिए। अगर वो कोई भौतिक कार्यों के लिए, यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए इस देवता की पूजा करो, ये करो, वो करो, ताकि धीरे 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 आपकी हृदय की मलिनता साफ होती जाएगी। भक्ति भी तो सात्विक स्थिति में आकर की जाती है ना, तो जब सत्वगुण में आप आ जाओगे तो धीरे 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 सात्विक कार्य करते करते आप ऊपर उठोगे, विकास होगा, और जब अपराध नष्ट हो जाएंगे तो फिर भगवान की भक्ति के विषय में श्रवण करने का हृदय में भाव उत्पन्न होगा। सद्यो वृद्ध्य वरुद्ध्य तेत कृति भी, जिसके पुण्य कर्म उदय हो जाते उनके हृदय में भगवान की कथा को श्रवण करने का दिल करता है उसका, यानी कि श्रवण करने की लालसा उत्पन्न होती है, तो धीरे धीरे होगी। ऐसे अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको डिस्टर्ब मत करो। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है, क्या चरम लक्ष्य है? कि कृष्ण को जानना। लेकिन डायरेक्ट से वो नहीं कर सकता है तो उसको उसका कार्य करने दो। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते। अब उस लोग को क्या खबर होती है कि इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य है और जीवन के लक्ष्य यानी कृष्ण के विषय में जानते ही नहीं है, तो वेदों का अध्ययन किस तरह से करते कि कैसे मैं कार्य करूं जिसके कारण मुझे इंद्र तृप्ति प्राप्त हो। किंतु सत्काम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बताए कि सत्काम कर्म करेंगे और वैदिक अनुष्ठान करेंगे तो नियमित इंद्रिय तृप्ति, अब क्योंकि वो एकली शास्त्र पढ़ रहा है ना, शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है, तो इससे क्या होगा, नियमित जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो उसके माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने से या कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंच जाए। अभी देखो असल में क्या होता है, वास्तव में बताऊं क्या होता है कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है ना, तो उसको इतना दिल करता है कि क्योंकि मुझे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई है तो ये बेचारे क्यों फंसे, उसके हृदय में ना करुणा होती है एक तरह से, वो हृदय से चाहता है कि सब लोग का कल्याण होना चाहिए, सबको रियलिटी पता होनी चाहिए कि देवता क्या है, भगवान क्या है, सबके विषय में, लेकिन वो नहीं समझेंगे। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचे। छोड़ो, उनको नहीं समझ पाएंगे, वो अपना कार्य कर रहे हैं तो उनको विचलित नहीं करना चाहिए। इसे भगवान बोलते ना, न बुद्धि भेदम जनयेत, उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे आने दो, उनको विचलित मत करो। आगे श्री पप्पा जी बोलते हैं, अपितु तो उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये बताया जा सकता है कि क्योंकि कृष्ण मूल हैं और सारे देवता जैसे पत्ते और टहनियां हैं, तो यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो संपूर्ण वृक्ष जो है, जैसे अगर मूल में जड़ में पानी डालते हैं तो संपूर्ण वृक्ष जो है वो संचित हो जाता है। धीरे धीरे उनको इस तरह बताना चाहिए कि सारे कर्म फल किस तरह से कृष्ण की सेवा में अर्पित किए जाते हैं, और अगर हम कर्म फल को अर्पित नहीं करेंगे तो फिर ये भले कितने ही सुंदर कार्य क्यों न हो, हमारे लिए सोने की जंजीरें बन जाएंगी और हमें दोबारा से संसार में आना पड़ेगा। तो हमें कर्मों के चक्कर को खत्म करना है, इसलिए ये सारे कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित करने हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य करता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका ये कार्य नहीं होता है कि वो सबको डिस्टर्ब कर दे कि नहीं आप सब बेवकूफ हो, सिर्फ मैं ही सही कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। उसको चाहिए कि वो इस तरह से कार्य करें कि जो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करने वाले अज्ञानी लोग हैं ना, वो ये समझ सकें कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए और किस तरह से आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते वो अज्ञानी है, उसको अक्कल नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगी बात, उल्टा आप बोलोगे तो और भी अपने स्तर से नीचे गिरेगा, तो उसको छेड़ो नहीं। परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। बस उसको किसी तरह से कृष्ण की ओर आकर्षण उत्पन्न हो जाए, यदि वो थोड़ा सा भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएगा फिर वो देवताओं की पूजा करना या फिर जो दूसरे हैं यानी वैदिक विधि विधानों का पालन करना अगर छोड़ देता है और भगवान की सेवा स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब तक उसको कृष्ण की ओर आकर्षण ही नहीं है तब तक वो नहीं करेगा। और श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। कैसे भाग्यशाली, जो कि कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। चैतन्य चैतामृत में कहा जाता है, ब्रह्मांड भ्रमयते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइये भक्ति लता भी। ये ब्रह्मांड में करोड़ करोड़ जीव भ्रमित हो रहे हैं, कोई किसी ओर जा रहा है, कोई किसी ओर, इंद्र तृप्ति लक्ष्य बना दिया है, लेकिन इन सारे विचरण करते हुए करोड़ों करोड़ों जीवों में से कौन भाग्यवान है जी? एक ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज, कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण की भक्ति का बीज प्राप्त होता है, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बस तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई है तो फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि मैं ना ये देवता के लिए इस हफ्ते में ये वाली देवता की पूजा करूं, अभी ये वाले देवता का दिन आ गया तो ये करूं, इसके बाद ये करूं। नहीं, आप अगर कृष्ण की भक्ति करते हो तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साथ साथ श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे कृष्ण के अंदर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि केवल कृष्ण की भक्ति करने से मेरे जीवन का हर कार्य सिद्ध होगा। मुझे जो कुछ चाहिए वो केवल कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं, स्रोत है कृष्ण, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कृष्ण की शरण में हूँ, कृष्ण का नाम ले रही हूँ, कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रही हूँ, तो यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो एक कृष्ण की भक्ति करने से, यानी कृष्ण की कथाओं का श्रवण और कृष्ण के नाम का जप करने से उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते। अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं होता तो उसे करोड़ अपने अपने बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता, और उन कर्तव्यों से उसे जो जो फल प्राप्त होते वो केवल और केवल उसे कृष्ण की भक्ति से प्राप्त हो जाते। लेकिन इस स्तर तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता, जब तक बुद्धि इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, तब तक के लिए भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना। तो जो अज्ञानी है और कर्म कांड में लगे हुए हैं तो उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। वो जो जिस स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो उनको डायरेक्ट से ये नहीं बोलना चाहिए कि आप गलत हो, बल्कि जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, तो जो विद्वान है उन्हें भक्ति भाव से काम करते हुए उन्हें इस तरह से लगाना चाहिए कि वो कार्य करें और धीरे 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 कृष्ण का कृष्ण भावनामृत में विकास कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।